संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे। समय सार बंदाधिकार की चर्चा आरंभ करनी है। समय सार भेद विज्ञान का सार है, शास्त्र है। जीवाजीवाधिकार में मैं 29 प्रकार के जो प्रभाव हैं, जिन्हें हम रागादि और वर्णादि के भेद से दो प्रकार कहते हैं, उन 29 प्रकार के भावों का ना ये भाव मैं हूं और ना मैं उनका स्वामी, इतनी बात समझाई। फिर कर्ता कर्म अधिकार में ये समझाया कि उन वर्णादि और रागादि का ना मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं। फिर कहते कि ठीक है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, लेकिन हैं तो अच्छे पुण्य भाव। इस तरह वो कहते हैं कि जिनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, नेकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, उनमें अच्छे बुरे का भेद करने का क्या लाभ है? ये बात तुम क्यों कह रहे हो कि हैं तो अच्छे? तब जिनका हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो उनके साथ अच्छे बुरे की कल्पना करना ये मुफ्त के राग द्वेष की उत्पादक है। इसलिए उनमें अच्छे बुरे का भेद करना इस अज्ञान को दूर करने के लिए पुण्य पाप अधिकार लिखा। ये आपकी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूं। उदाहरण में गंभीरता बनी रहे इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने पोते के लिए एक सुंदर लड़की चाहिए। आपके लिए भी हो सकती है, आपके लिए चाहिए, लेकिन उसमें वो गंभीरता नहीं रहती है, ख्याल में आई ना? इसलिए मैं ये बोलता हूं कि आपके पोते के लिए एक सुंदर लड़की चाहिए, और आप मंदिर में दर्शन करने गए और एक सुंदर लड़की आपको वहां दिखाई दी, आपको लगा कि ये लड़की मेरे पोते के लायक है। फिर आप लोग मुझे पूछते हैं किसकी लड़की है, क्या है, क्या करती है, कहां पड़ी, क्या है, उससे जानकारी उसकी लेते हैं। लोग मुझे देखते हैं आपको क्या मतलब? नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं जैसे जानकारी लेना चाहता हूं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। कि नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है ना? कि नहीं नहीं अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। मेरा एक पोता है, मैं चाहता हूं उसके लिए अच्छी एक लड़की मुझे ठीक लगती है, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है। सुनना, अब यदि इस वक्त ये बात होती कि मैं अपने लिए लड़की पसंद करता हूं तो झगड़ा खड़ा हो जाता है ना, इसलिए मैंने दादाजी रखे। तो लोगों ने कहा भैया इसकी तो परसों ही सगाई हुई है, समझ में आया ना? अब मेरी परिणति क्या होनी चाहिए? खबर खत्म, मेरा कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि इसकी सगाई हो गई कि नहीं हो गई, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं किसकी लड़की है, क्या है, तुम ये बताओ। ये प्रश्न तुम्हारे हृदय में खड़ा होगा, और हो तो तुम सज्जन पुरुष हो, क्योंकि जिस प्रयोजन से तुम उसे जानना चाहते थे वो प्रयोजन यही समाप्त हो गया। फिर भी कोई आदमी उसी कहता है तुम तो बताओ कि सगाई हो गई है कि सगाई टूटते कौन सी देर लगती है, तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूं, अरबपति आदमी हूं, और मेरा बेटा कितना होशियार है, कितना सुंदर है, कितना पढ़ा लिखा है, एक दफा मेरा ऑफर सुनेगा तो वो सगाई मंगाई सब काफूल हो जाएगी। ये आदमी सोचने वाला बेईमान है कि ईमानदार? और कोई कहे कि इसकी तो शादी हो गई परसों और फिर भी नालायक पूछे, क्यों? तो वो कैसा होगा? ऐसे ही जब हमने कह दिया कि ये पुण्य पाप न तुम हो न तुम्हारे हैं, न तुम इनके कर्ता हो और न तुम इनके भोगता हो, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्वयो, परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। अब तुम उसमें अच्छे बुरे का भेद क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे बुरे का भेद करना ही पुण्य पाप संबंधी भूल है। ये बात पुण्य पाप अधिकार की 20 गाथाओं में बताई गई है। क्या विषय है पुण्य पाप अधिकार का? अंदाजा लगा, पुण्य बुरा है पाप अच्छा है और बस ये बताया है, ये नहीं बताया है। वो कहते तेरा संबंध ही नहीं है कुछ, उससे तेरे को कुछ लेना ही देना नहीं है, फिर उसमें तेरे को अच्छा बुरे का भेद करने का मतलब क्या है? मुझे सागर में कोई मकान जमीन खरीदनी नहीं है तो हर जगह पूछता तुम्हें कि ये जमीन किसकी है, कहां की है, ये बिक गई क्या, क्यों ये क्यों पूछता फिर? कुछ ना कुछ भाव होना चाहिए। या तो मेरे को बढ़िया करके यहां बंगला बनाना हो या बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाना हो तो मैं पूछ सकता हूं। बंगला बनाना पाप भाव है, धर्मशाला बनाना पुण्य भाव है, लेकिन मुझको कोई करना ही नहीं है, क्यों? तो एक प्रश्न कहां से खड़ा होता है कि पुण्य भला और पाप बुरा? ये जो जिनके तेरे से कोई संबंध नहीं है उनमें अच्छे बुरे का भेद करना ये समझदारी नहीं है। एक बात और मरम की है कि ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे जानना ही नहीं है, क्यों निर्मल जी? ये तो नहीं कहा, क्योंकि जानना तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, सब जानने में आएगा कि तुम्हें इस लड़की को देखना ही नहीं है, तुम मंदिर में दर्शन करने आए, भगवान को देखो, क्यों? अब दो आंखें हैं तो भगवान का भी दिखेंगे और जो वहां दर्शन कर रहे होंगे वे भी दिखेंगे, हम ऐसे क्या करें? और नहीं देखेंगे तो टकरा नहीं जाएंगे, बचने के लिए देखना तो है क्या नहीं है, क्यों? देखने का निषेध नहीं है, लेकिन आगे विकल्प लंबाने की बात है, देखते रहने का निषेध है, क्योंकि बिना राग भाव के देखते नहीं रहोगे, बिना देश भाव के उसके बारे में सोचते नहीं रहोगे, हैं? तो ये बात समझाइए पुण्य पाप अधिकार में। फिर ये प्रश्न हुआ कि ठीक है इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, अब मुझे इसके अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं सोचना है, है ना? पुण्य भी बुरा है, पुण्य को जितनी गालियां दो ये पुण्य पाप अधिकार का काम नहीं है, ये ज्ञानी धर्मात्माओं का काम नहीं है। अरे गालियां तो पाप को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली देने से अपना मुंह तो खराब होता ही है ना। तुम्हारे मुंह से हम गालियां सुनेंगे तो जिसके को तुम गालियां दे रहे हो उसके बारे में जब सोचेंगे तब सोचेंगे, तुम्हारे बारे में उसी बार समझ लेंगे कि तुम क्या चीज हो, क्यों? कि बिना गाली के बात ही नहीं करता, ये कैसा आदमी है? तो इसलिए कहते हैं तो ये भैया पुण्य पाप है क्या? के ये तुम्हारे तुम नहीं हो, तुम्हारे शत्रु ग्रुप के हैं, बहुत जानना है, बोलो। ये आश्रव है, पुण्याश्रव पापाश्रव, ये किसके भेद हैं? ये आश्रव के भेद हैं। और आश्रव क्या है? आश्रव दुख कारे घनेरे मोदी बनते तने मेरे बेरे, कि वे घना दुख देने वाले हैं तेरे को आश्रव, तो क्या करूं फिर, मैं मार दू ना उनको? क्या धंधा सोचता तेरे को, मानने मानने की सोचती है? हम तो कह रहे उसके बारे में तू सोच भी मत, जानने में आ गए हैं तो जान ले, ज्ञान को भी मत लंबाए, माने जानता मत रहे, क्योंकि तेरे पास जानने के लिए बहुत बहुत चीजें हैं और बतेरा भगवान आत्मा कितना महान है कि जिसके जानने से तेरा कल्याण हो सकता है तो उसने गंदगी को काहे को देखता है। सुंदर बाग बगीचे हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, उधर तो देखता नहीं है और वहां गंदगी गंदगी पड़ी है, गंदगी ले धरना तुम, कोई नंगा आदमी खड़ा है उधर को देखता, कोई अर्धनग्न महिला खड़ी है तो उधर को देखता। अरे तेरे को देखने को इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना जगत में, इस गंदे पदार्थ को क्यों देखना चाहता है? ये आश्रम तो गंदे पदार्थ है ना, क्यों? इस तरह उन्होंने आश्रम अधिकार तक भेद विज्ञान कराया। किन किन से? वर्णादि और रागादि से। फिर संवर अधिकार में उन्होंने भेद विज्ञान का अभिनंदन समारोह रखा। आपके पास शास्त्र हो किसी के हाथ में तो निकालो, भेद विज्ञान अधिकार का पहली ऊपर के सबसे पहली पंक्ति संस्कृत की पढ़ो, भेद विज्ञान संवर अधिकार की है ना, 181 गाथा होगी। अलगा भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, ऐसा लगा क्लियर शब्दों में उसने लगा भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। और फिर आप उसे पढ़ो उसके पद्यानुवाद को संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण जो भेद विज्ञान, अब उसका अभिनंदन करते हैं। ये शांतिलाल जी हमारा वहां पढ़ाते हैं ना आत्मख्याति सबको, तो उन्हें आत्मख्याति की पंक्ति सब याद है ना? अभिनंदन। और फिर पूरा छंद पढ़ो, यदि पद्यानुवाद पढ़ लोगे यदि इसका तुम, तो उसमें क्लियर आया है भेद विज्ञान के अभिनंदन के अलावा और कुछ चर्चा नहीं की। तो संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। फिर उसके बाद कहते हैं निर्जराधिकार। अब निर्जराधिकार में ये बताना चाहिए थे कि निर्जरा कैसे होती है, कहां से होती है, क्या होता है, है? निर्जरा के 53 जो भेद हैं, जो संवर के कारण थे वहां निर्जरा के कारणों को बताया है, कोई चर्चा नहीं। पर सिर्फ ज्ञानी जीव भोगों के बीच में भी रहे तो उसे बंद नहीं होती है, निर्जरा होती है, ये बात समझाने में पूरा निर्जरा अधिकार लगा दी क्या? अरे निर्जरा तो समझाते भले आदमी, सत्वासूत पढ़ के नहीं आए हो वहां पढ़ लेना, नियम सार में तो लिखा है कर्म अजीव अधिकार आया तो भैया ये मैं ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, तो मेरे दूसरे ग्रंथों से पढ़ लेना। क्या लिखा मलधारी देव ने? आत्मा की रुचि में बाधक जान कर मैं उनकी यहां विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं, उन्हें तुम कर्म ग्रंथों से पढ़ लेना। नहीं पढ़ने की बात तो नहीं गई, लेकिन तरकीब से तो लिख ही दिया कि जो मेरा अध्यात्म का रस है अब उसमें मुझे बाधक लगता है। तेरे को जिनवाणी बाधक लगती है, गोमर सार जब लगता है, मैं क्या करूं? देखो अब निजराधिकार में ये बताने के बाद में अब बंध अधिकार आरंभ होता है। अभी अपन कहां आ गए हैं, कहां खड़े हैं, ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। इतने में आप 5-7 मिनट जो लगे हैं वो बताने की मैं कोशिश करूं कि समय सार कहां से शुरू होता है और अपन कहां आ गए। अब बंधाधिकार में सीधी सच्ची बात है, बंध किसे कहते हैं? बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृतियां 8 होती हैं, फिर 148 होती हैं, हैं क्यों? फिर वो कब कब बनती हैं, कब नहीं बनती हैं, कब विच्छुप्ति हो जाती है, कब सत्य है, कब असत्य है, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, सारा बताओ। प्रकृति बंध में, प्रदेश बंध में कितने असंख्यात परमाणु हैं, वो कैसे आत्मा के साथ बनते हैं वो बताओ। फिर स्थिति अनुभाग बंध बताओ, कौन से कर्म की स्थिति कितने काल तक है, कुछ चर्चा नहीं आता नहीं होगा कुंद कुंद को। बंध अधिकार तत्वासूत्र का पढ़ो तो कर्म की 148 प्रकृतियां गिनाई हैं, क्यों? और उनकी टीकाएं पढ़ो तो उनमें कौन सी बंधु दे सत्व वगैरह सारा बताया है, और वहां उसकी बातें नहीं करते। ये बंध अधिकार में उसकी बातें ही नहीं करते हैं, और बात करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? कर्मों से आत्मा बंधा नहीं है। मन वचन काय की चंचलता से आत्मा बंधता नहीं है। तुम्हें मन को काबू में करो, वचन को काबू में करो, क्यों कहते कि नहीं? भाई हिंसा मत करो, अहिंसा पालोगे, चेतन अचेतन की हिंसा से आत्मा बनता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पांच इंद्रियों के भोगों में से को छोड़ो, कि पांच इंद्रियों के भोगों से आत्मा बंद होता ही नहीं। क्या कह रहे, सारे जगत को क्या लगेगा कि कौन पागल बोल रहा है? कर मान बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काए योग सो, प्रचेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे नाही पंच इंद्रियन के भोग सो। क्या कर्म सो अवंध सिद्धे, योग सो अवंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। यदि कर्म से बनता होता तो सिद्ध सला में भी अनंत कारमान बगणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं उन्हीं आकाश के प्रदेशों में, जिन आकाश के प्रदेशों में सिद्ध भगवान के असंख्यात प्रदेश सहित वो रहते हैं, विराजमान है, वहां चैंट जाती हूं उनको। यदि कर्म बांधते हैं तो बांध लेते उन्हें, और मन वचन काय की चंचलता से बंधते हैं तो आप जानते हैं मन वचन काय चंचल किसके होते हैं? ज्यादा है? लड़का बहुत चंचल है, शांति से बैठना ही नहीं जानता है, जिसको पार्किंसन हो जाए, हाथ पैर नहीं हिले, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए। अरहंत भगवान को सबसे ज्यादा योग का कंपन होता है, वो निबंध नहीं होता। और मुनिराज इंडिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, भाषा समिति पूर्वक बोल रहे हैं, और कदाचित जीवों की हिंसा हो जाए, कदाचित नहीं, गारंटी से होती ही है। क्यों भैया? कैसे? क्यों क्यों होती है? अब दुर्भाग्य की बात कहो चाहे सौभाग्य की बात, कि ये हमारी आंखें जो है ना, वे घुटनों में नहीं है। घुटनों में होती तो अच्छा रहता ना। क्यों, क्या कह रहे हैं आप? ये आंखें जो चेहरे पर हैं, ये घुटनों में लगी होती आंखें तो अच्छा रहता। क्यों? कि मुनिराज चार हाथ जमीन देख के चलते हैं। चार हाथ क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई का जो एंगल बनता है वो चार हाथ बनता है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, तो ये चार हाथ ही क्या देख सकते हैं। अब बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं कि जो चार हाथ से दिखाई नहीं दे, नहीं होते। आपको मालूम है आपका कितना दिखाई देता है आपको? एक प्रश्न पूछ लूं, कल शाम को मैंने समझा दिया था, प्रश्न सामूहिक होता है और उत्तर व्यक्तिगत। जब मैं किसी का नाम पूछूं तब बोलना, मैं प्रश्न करूंगा तो सब चिल्लाने मत लगना, नहीं तो फिर यहां मुझे प्रशिक्षण की कक्षा लेना शुरू करना पड़ेगा। क्या कितनी दूर तक का आप देख सकते हैं इसका अंदाजा आपको है कि नहीं है? क्या एक किलोमीटर तक क्या देख सकते हैं? भाई साहब मना किया तो सिर तो हिला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख सकते एक किलोमीटर का। आपको सूरज चांद दिखाई देते हैं कि नहीं? नहीं दिखाई देते तो एक ही किलोमीटर होंगे। अरे हमें कितनी दूर तक का दिखाई देता है इसकी भी खबर नहीं, दिखाई दे रहा है फिर भी हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे सोचने में नहीं आई, क्या करें बोलो। और कितने पास का देख सकते हैं? देखो मैं कहता हूं चार हाथ का देख सकते हैं ना, तो पढ़ो निर्मल जी, तुम तो चश्मा लगाए हो, पढ़ो, नहीं पढ़ सकते इतनी दूर से, नहीं तो इस चार हाथ का भी दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि अक्षर बहुत छोटे हैं, तो छोटे अक्षर दिखाई नहीं दे रहे तो इतने जीव तो हो सकते हैं कि नहीं? तो दो जीव कैसे दिखाई देंगे मुनिराजों को, मैं बताऊं आपसे, तो सभी सूक्ष्म जीव हैं कि नहीं हैं? अरे वो उतनी दूर से जो जीव दिखाई देंगे वही तो देखें, लेकिन अब क्या करें, असत्य अनुष्ठान है, घुटनों में आंखें तो है नहीं, एक हाथ का हमें ये दिख रहा है, जितने अक्षर दिख रहे ये दिख जाए, ऐसा दिखता नहीं, ऐसा कर दे। तो चेतन अचेतन की हिंसा भी उनके जीवन में हो रही ना, फिर भी उन्हें बंद नहीं होता, शास्त्र कहते हैं। और ज्ञाता विषय भोग में भरत चक्रवर्ती आदि सम्बन्धी जीव को 41 कर्म प्रकृतियों का, अनंतानबंदी का, मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, 96,000 शादियां करने पर, छखंड की विभूति का मालिक होने पर भी। तो एक दफे फिर अपन दोहराएं चंद को, कारमान बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, और बंधे ना कदापि मने बच्चे काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। ये चार बातें हो गई ना, अब इन चार के चार उदाहरण एक पंक्ति में, कितना सुंदर गठन है काव्य का, बनारसीदास का है। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो। चार उदाहरण आ गया ना, चारों मैंने समझा दिए ना आपको। इत्यादि के वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव, इतनी चीजों के और लो लगा लो, उनसे जीव बंधता नहीं है, तो बंधे काय से, के बंधे एक रागादी अशुद्ध उपयोग सो। रागादी रूप जो अशुद्ध उपयोग है, एकमात्र उससे बनता है। ये रागादि अशुद्ध उपयोग में क्या क्या आता है, मिथ्यात्व, अवैधति, प्रमाद और कसार, इनसे बनता है। ये बात इस बंध अधिकार में समझाएंगे। मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दिया है, अभी अपन एक गाथा आएगी उसे चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी अपन इस बंधाधिकार का आरंभ करते हैं। क्या लिखा है, अथ प्रवसति बंधा, अब बंध प्रवेश करता है। क्या कहां, कौन कहां प्रवेश कर रहा है? ये जो समयसार ग्रंथ है ना, उसको अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया कि ये समयसार नाटक है। अपन तो समझते हैं कि बनारसी दास का लिखा हुआ नाटक है, समयसार नाटक बनारसी दास का है और समयसार कुंद कुंद का है। अमृतचंद के जमाने में तो बनारसी दास थे ही नहीं। सबसे पहले ये समयसार नाटक है इस बात को किसने प्रस्तुत किया, अमृतचंद ने। उनने पकड़ा, कैसे पकड़ा, उसको समयसार के रूप में प्रस्तुत क्यों किया राजेंद्र जी? देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने रिसर्च की है अमृतचंद के हृदय में बैठकर। अभी मैं गया था दिल्ली सेमिनार में, तो संस्कृत बड़ी अच्छी भाषा है कि प्राकृत, प्राकृत जैनियों की है, संस्कृत ब्राह्मणों की है, खूब चलता था। हमसे भी पूछते थे लोग, आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? मैंने कहा गजब करते हो, जिसमें समय साल लिखा गया उस प्राकृत भाषा को, हमारे लिए उससे महान और क्या हो सकता है। कुंद कुंद के हम इतने भगत हैं, तो उनकी वाणी हमारे लिए इतनी कितनी बढ़िया हो सकती है। पर अमृतचंद ने जिस भाषा में उसकी टीका लिखी, वो वाणी हमारे लिए बुरी कैसे हो सकती है? हम कैसे दे सकते हैं उसे ब्राह्मणों को? हम तो प्राकृत भी हमारी और संस्कृत भी हमारी, क्यों अमृतचंद की भाषा हम तुम्हें दे दें? नहीं नहीं नहीं, हम तो दोनों के महाभगत हैं, तो हिंदी हो के गुजराती कौन सी भगत हो। अरे जिस गुजराती में पूज गुरुदेव श्री ने हमें उस समय सार का मर्म समझाया, उस गुजराती को हम बुरी कैसे कह सकते हैं? बोलो क्यों? और हिंदी क्यों? जिसमें हमने पढ़ा है, जिसे हमने अपने लेखन की भाषा बनाई है, जो सारे हिंदुस्तान के 70% लोग जिसे समझते हैं, समझे कितने होंगे हिंदी भाषी, भले ही थोड़े कम 50 करोड़ होंगे, क्यों पूरा मध्य प्रदेश, पूरी यूपी, पूरा बिहार, समझे ना आपकी में बहुत बड़ा एरिया है जो प्योर हिंदी भाषी है, हरियाणा और आसपास के पंजाबी, हरियाणवी, फिर गुजराती, फिर मराठी, तो ये बंगाली, ये सब लोग हिंदी समझते हैं, ख्याल में है ना। तो 70% लोग हिंदुस्तान के 70% नहीं, विश्व के हिसाब से निकालें तो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली यदि कोई भाषा है तो उसका नाम है हिंदी। कोई विश्व की, अंग्रेजी भी नहीं, सारे विश्व में फैली है। कितने देश कैसे हैं, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने करोड़ के, इतने करोड़ के, उनमें क्या दम है, उन सब की गिनती कर लो ना तो अकेला यूपी में खत्म। टक्कर कोई ले सकती है तो थोड़ी बहुत चाइनी भाषा ले सकती है, चाइना ले सकता है, समझ गए ना आप है? लेकिन और कोई नहीं ले सकता, उसे हम कैसे बुरी कह सकते हैं। ये तुमने अच्छी और बुरी ये झंझट कहां से निकाला, ये भाषाओं में सेमिनार इसके लिए किया है, अरे जिसकी जो विशेषताएं हैं वो बताओ ना, जो उसका जो बढ़ियापन है जो बताओ ना, ये एक क्यों बताते हो। तो ये जो यहां पर नाटक समयसार कहां से बना, ये नाटक समयसार कहां से आ गया, कि तत्वा सूत्र में सात तत्वों का क्रम है, क्या है, जीवा जीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष है ना, एक क्रम है जो अपन सबको याद है। अब समयसार में एक क्रम नहीं, समयसार में क्या क्रम है, भूयत्रेण विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निज्जर मंदो मोखो ये संपत्तम, ये क्रम बदल दिया। तो कुछ लोग छंद के अनुरोध से, छंद अनुरोध समझते हैं, कि अब जब अब गद्य में लिखना हो तो सीधा लिख सकते हैं, अब पद्य में लिखना हो तो जो शब्द जहां सेट होता है वहां ठोक देते हैं, बंद को पहले लिख दें, मोक्ष को बाद में लिख दिया। अब सुनिए क्या, वहां तो बंद फिर संबर आता ना, यहां संबर पहले आ गया, निर्जरा पहले आ गया, फिर बंद आया, ऐसा क्यों। तो उनके दिमाग में भी नाटक लिखने का था, किनके, कुंद कुंद के दिमाग में, तो उनने नाटक में स्टेज पे जोड़े से आते हैं, अकेला कोई एक आदमी बहुत कम आता है, दो आदमी आते हैं उनमें संवाद होता है, तो उनने जोड़े बनाए। कैसे जोड़े बनाए, आश्रव और बंध का नहीं बनाया, अनुकूल है दोनों, प्रतिकूल वाले जोड़े, एक नायक एक खलनायक, एक हीरो एक साइड हीरो, एक साइड हीरो नहीं क्या विलेन, समझ गए ना। तो संबर के साथ, संबर का तो कोई जोड़े ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया देखो आप, जीव के साथ अजीव का जोड़ा, फिर कर्ता के साथ कर्म का जोड़ा, फिर पुण्य के साथ पाप का जोड़ा, फिर आश्रम के साथ संवर का जोड़ा, अब फिर निर्जरा को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई है नहीं, 9 तत्व हैं, एक एक तो बिना जोड़े के रहेगा, एक को तो ब्रह्मचारी रहना ही पड़ेगा ना, और बंद के बाद मोक्ष का जोड़ा, तो जोड़े से उन्होंने तत्व रखे। तो स्टेज का मतलब है नाटकीकरण उन्होंने किया, और इस बात को अमृतचंद ने पकड़ा, हरेक का काम नहीं है, अरे अमृतचंद जैसा आदमी ही पकड़ सकता है और कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन अमृतचंद ने पकड़ा, ये हमारी समझ में आ जाए तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और उनने कैसे पकड़ा ये आ जाए तो उससे भी बड़े भाग्यशाली है। क्यों, ये जो प्रेरमी गाथा है समय सार की, वो सिर्फ सम्यक्त की परिभाषा नहीं है, उसमें आगे के अध्यायों का क्रम भी है। जो तत्वासूत्र का चौथा सूत्र जीवाजीवासर बंध संबंध निरा मोक्षास्त तत्वम फिर सात तत्वों के नाम नहीं गिनाए हैं। आगे सूत्र जी में किस क्रम से हम वर्णन करेंगे एक क्रम भी उनने बताया है, तो आगे के अधिकारों के उनने नाम भी गिनाए हैं। तो अब ये बंधाधिकार आया है, इसके बाद सीधा मोक्षाधिकार आएगा। बंधो मोक्ष का जोड़ा है ना। देखो बंधाधिकार की तो बात अपन करेंगे ही, लेकिन मोक्ष अधिकार में मालूम क्या लिखा है? मोक्ष की बातें नहीं करनी। क्या अन्ना जी बता दूं? ये लिखा है कि बंद की चर्चा करके अपने को मोक्ष मार्गी मानने वाले। क्या लिखा? ये कौन है? विपाक विचय धर्म ध्यान। चंद की चर्चा कर रहा है, विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या लिखा है? हमें तुमने रमेश के धर्म विपाक विचय धर्म ध्यान के लोग से अंधी हुई है बुद्धि, जिनकी अंधे हो गए इसके लोभ में। क्लियर लिखा? विपाक विचय धर्म ध्यान के उसमें अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए मैं मोक्षाधिकार लिखता हूं। क्योंकि तो बंध के अध्ययन से, मनन से, चिंतन से बंध नहीं कटता। क्या लिखा? बंध के मोक्षाधिकार में लिखते मोक्ष नहीं मिलता। तो भैया बंध अधिकार पूरा हो गया, आप छुट्टी करो ना, क्यों यहां बंध की चर्चा लाते हो? देखो तो आप समय सारे के देखो तो क्या स्टाइल है, क्या चीज है, कौन चीज कौन क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, सारी जिंदगी इसमें लगाने का बहुत कम है। वहां सेमिनार में एक आदमी भोपाल के प्रोफेसर थे, कोई थे, रतन चंद जी नहीं है, घबरा नाम दूसरे थे, नरेंद्र कुमार ऐसा नाम है। तो उन्हें लेख लिख के लाए थे, वो लेख उन्होंने कहा मेरी 15 साल की तपश्चर्या का फल है दादा। और उसको उन्होंने एक किताब लिखी है 300 पेज की, वो किताब भी लाए थे। और उन्होंने एक कही बात, मेरी अध्यक्षता में वो किताब वो निबंध पढ़ रहे थे, क्या कभी मैं ये किताब भेंट करता हूं, मैंने आपको वहां भेजी है जयपुर, आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ना इसे। और विषय क्या था? विषय ये था कि आधुनिक विज्ञान में जो भूगोल का स्वरूप है, वो जैन धर्म का जो भूगोल है, उन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया था। और वो उनका दावा था कि उन्होंने सब सिद्ध किया है सही। क्या सही सिद्ध किया है? कि जो हमारे सूरज यहां से 800 योजन दूर है, और सूरज का जो नाप दूरी बताई जाती है वो इतनी बताई जाती है विज्ञान में, तो उसके हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो एक योजन उसका उनका जो 8 योजन है ना, कितना 8 योजन है, 80 योजन, तो उसमें 80 का भाग करो इतना बड़ा योजन होता है, ऐसा करके निकाल निकाल के। फिर चंद्रमा कितना, 80 और जोड़ दो 880, और उसके ऊपर तो आप चंद्रमा का क्या करें, अब उसकी दूरी यहां बहुत कम बताई है विज्ञान ने। तो ये चंद्रमा अलग है, ये चंद्रमा अलग है, जो उन्होंने अपनी बातें रखी। और इसमें कहा कि मैंने इसको बहुत एक किया है, और आप सब लोग इसे पढ़ें, मेरे से आप जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ेंगे। तो बहुत पीछे ही पड़ गए, सब लोग याद करने लग गए। तो मैंने अपना अध्यक्षीय भाषण में कहा मैं इसे गारंटी से नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को ये पक्का विश्वास है कि आधुनिक विज्ञान का भूगोल हमारे जैन दर्शन का भूगोल बिल्कुल मिलता नहीं है। अब जिन लोगों को इसमें रस है मिलाने में, वे लोगों से मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के भी अवश्य पढ़ें। यहां पर जो विद्वान बैठे हैं नई उम्र के हैं, मैं 77 वर्ष का हो गया हूं, और मैंने पिछले 15-20 वर्ष से कुंद के अलावा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, उन पर मैंने 5000 पेज लिखे हैं, वही पढ़ता रहता हूं मैं। अब मैं छोड़कर तुम्हारी झंझट में पढ़ने वाला नहीं हूं। अब इसमें मैं क्या कमेंट्स करूं अध्यक्ष भाषण में? मैं तो जो मैंने 15 साल में जो 20 साल में पढ़ा है, वो मैं आपको बताता हूँ। प्राकृत भाषा सौरचनी प्राकृत में कुंद ने क्या लिखा है वो माल आपको समझना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको तो पढ़ के समान बोले कि नहीं नहीं पढ़ना नहीं, हमें आपका तो सुनना है, पढ़ना नहीं है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं सुनने को, आपका तो सुनने में ही मजा आता है, आपके लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। क्या तो मैंने त्रिकाली भगवान आत्मा सुनाया सबको भैया ये चीज है, तो इस चीज को तुम अपने जीवन में लाओ तो ही वास्तव में आत्मा ज्ञान दर्शन है उसके सार है, नहीं बाकी इन बातों में कुछ दम नहीं है। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा आगे, है ना। विद्यानंद जी महाराज के पास भी खबर पहुंच गई थी, तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत बहुत आपके भाषण की बहुत प्रशंसा करी, कहते कि भाई लोग तो आपके भाषण पर रीझ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने महाराज ये तो मैं तो अपनी बात कही, अरे कहां ही झंझर में फंसू मैं, तो भाई ये बहुत माल है जिंदगी इसमें। क्या कहा वो क्या कह रहे हैं बंदाधिकार में, देखो अपना मंगलाचरण पढ़ते हैं, राग उद्गार पढ़ो भैया, महारसेन सकलम पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मध्यमा देखो, अमृतचंद्राचार्य देव ने हर अधिकार में जो मंगलाचरण किया वो सब ज्ञान को ही नमस्कार किया है। इसमें मैंने बहुत लिखा है, वो कहीं तो ऐसा लगता केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, कहीं ऐसा लगता भेद ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, और कहीं ऐसा लगता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार किया। वो जो उसके विशेषण है ना, उन विशेषणों से ये तीन प्रकार के ज्ञान की बात हो सकती है, और मैंने इसमें आगे पीछे विस्तार से लिखी है ये बात। अब ये क्या है कि उन्होंने एक बात है कि ज्ञान को ही नमस्कार किया, दूसरी बात ये है कि छंद हरेक में शार्दूल विकीर्णित ही रखा, छंद में भी चुनाव में राजन बस वही मंगलाचरण में वही छंद एक, क्यों कि नाटक के स्टेज पर पुराने जमाने में जो नाटक होते थे हजार वर्ष पुराने, तो आज के नाटक छोड़ दो आप, आजकल तो सब मामला पलट गया है। हमने नाट्य शास्त्र पढ़ा है भरत मुनि का, 2000 वर्ष पुराना है, और उसमें जो नियम बताए हैं नाटक के, वो नाटक में पहले एक वो आता था सूत्रधार, उसमें नांदी विधान होता था, वो सूत्रधार आकर के बताता था क्या होने वाला, उसकी पत्नियों भी दोनों आते थे कि आज तुम क्या दिखाने वाले हो, आज हम समय सार नाटक दिखाने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, तो वो सब थोड़ा परिचय देते थे, वो सारी पद्धतियां उसमें थी, और उसमें नायकों का नक्की था और नायक कैसे होते हैं, तो इन्होंने यहां पर ज्ञान को नायक बनाया और मैं छात्र को खलनायक। अब इन्हें अलग अलग हैं, तो बंध अधिकार में बंध को खलनायक, ज्ञान को नायक, हर अधिकार में नायक तो ज्ञान ही है, और सामने वाला प्रतिद्वंदी कभी रामायण आ जाता है, कभी कंस आ जाता है, कभी जरासंध आ जाता है, ऐसा है ना। तो वो यहां कहते हैं, और वो आदमी नृत्य बहुत ज्यादा होते थे पहले के नाटक में, और जितने भी संवाद होते थे वो सब पद में ही होते थे। आपने पुराने नाटक यदि देखे हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ कौन सा नाटक है, भारतीय हरिश्चंद्र का लिखा हुआ हरिश्चंद्र नाटक है, उसमें आप देखो बिल्कुल आदमी हर आदमी आकर के सीता और राम बात करते हैं स्टेज पर, तो दोहा बोल, वो दोहों में ही करते हैं, छंदों में ही बात करते हैं, सीधे गद्य में बातें ही नहीं करते हैं, है ना, तो नाचते हुए आते हैं, तो नाचते हुए कोई आए तो उसके लिए शार्दूल विकीर छंद चाहिए। तो कैसा शार्दूल, शार्दूल माने जानते हैं अष्टापद, जो शेर होता है ऐसा कोई आठ पैर का शेर होता कोई कहते हैं, बहुत उग्र प्रतापी अष्टापद जिसे बोलते हैं, और वो बहुत उग्र प्रतापी होता है मालूम आप जानते हैं, उसका जन्म जो होता है गर्भ, गर्भ जन्म, तो वो अपने तुम्हारे तुम्हारे जैसा और शेरों जैसा नहीं होता, बकरियों जैसा नहीं होता, अपन लोग तो एक जाले में लिपटे आते हैं, अंदर पेट में जाले में लिपटे रहते हैं, अपन को तो जो सुरक्षा होती है तो होती है मां की सुरक्षा होती है उससे, नहीं तो तुम हाथ पैर वहां चलाओ बेटा बेचारी मां को मुश्किल हो जाए लेना देना, जिसका पेट फट जाए, जाले में लिपटे रहते हो और बाहर आते हो तब जाला कटता है, डॉक्टर लोग काटते हैं तब तुम निकलते हो, लेकिन उसके मां के पेट में वो जाले में नहीं होता, पोत है ना, अंडज अंडे में होता है गर्भ जन, लेकिन वो पोत वो उसे जरायुज नहीं होता, तो वो इतना उग्र पुरुषार्थी होता है कि जब मां के पेट से जन्म होता है तो सीधा उछल के कूद के भागता है, 10-20 किलोमीटर तो, किलोमीटर तो नहीं 10-20 मीटर भाग जाता है, पैदा होते ही दौड़ जाता है, और मां की योनि छत विच्छत हो जाती है और द्वारा बच्चों को पैदा करने लायक नहीं रहती हूं, इसलिए उसके द्वारा बच्चा पैदा नहीं होता, एक ही होता है। इतना उग्र पुरुषार्थी कोई जीव है स्टेज पे आए तो वो सीधा सीधा मरा मरा तो आ नहीं सकता, उछलता कूदता आता है, नाचता हुआ आता है, तो देखो लिखा इसमें लिखा ना बंधम धुनत, देखो छंद में ऊपर देखो बंध की धुनाई करता हुआ, क्योंकि एक शब्द में दम है क्या है? बंधम धुनत, अब हम कहेंगे रावण को मारता हुआ लक्ष्मण या राम जो भी आया तो रावण के गीत गाना चाहिए ना, कि कैसा रावण, एक मरियल आंखों से आंसू टपक रहे थे, नाक से नाक टपक रही थी, देख रही है कैसा रावण, उसको राम ने मारा उसने राम की क्या महिमा है, तो बंध भी कैसा कि जिसने सारे जगत को अपने कब्जे में कर रखा है, वो राग उद्गार महारसेन सकलम कृत्वा परमात्म जगत, जिसने अपने राग के उद्गार के महारस से सारे जगत को प्रमत्त कर दिया है, पागल कर दिया है, हिंदी में लिखा ना अपन ने रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया, हुबहू पद्यानुवाद है, किसने, जिस बंध ने है ना, क्रीड़ंतम देखो एकदम खेलता हुआ नाचता हुआ, आगे आया नाट्य या क्रीड़ंतम खेलता हुआ, वैसे जो वो आया ऐसे बंध को धुनत माने नष्ट करता हुआ, पूर्ण ज्ञान, ज्ञान कैसा है, खाता क्या है, शेर तो मांस मदिरा खाता है, ज्ञान क्या खाता है, आनंदामृत भोजी, आनंद रूपी अमृत का भोजन करने वाला है ना, सहजावस्थाम स्फुटियत नाटियत धीर उदार अनाकुल निरुपदी ज्ञान समुन मज्जती, उनको मथ करके और आ जाता है स्टेज पर, उसकी चर्चा की है। अभी जो पुराने नाटक के नायक हुआ करते थे वो नायक के नाम इसमें लिख दिए हैं, सब चार प्रकार के नायक होते थे, सुना कभी, धीरोदात्त, धीर धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, एक और रहेगा धीरोधत्त, पहला धीरोदार, दूसरा धीरोधत्त, तीसरा धीर ललित और तीसरा धीर प्रशांत, तो इनमें धीर तो हरेक में है, मन धैर्य तो हरेक में होना चाहिए, हमें वीर और धीर, नायक कैसे होते हैं, वीर और धीर, तो धीर को यहां महत्व दिया, वीर को महत्व नहीं दिया, तो वीर और धीर में क्या फर्क है, जो दूसरों की पिटाई कर सकता है उसे बोलते हैं वीर, और जो दूसरों से पिट सकता है उसे बोलते हैं धीर, क्या बात है, क्या कह रहे हो, पिटने वाला बड़ा, पीटने वाला छोटा। धीर का उदाहरण बताऊं मैं पद्म पुराण में से निकाल के, अभी 10 मिनट हैं, क्या उदाहरण बताता हूं, घबराना नहीं। कि जंगल में राम और लक्ष्मण गए थे, तो राम तो बेचारे सीता जी के साथ वहां पर बैठे रहते थे कुटिया में, और सारे खाने पीने की व्यवस्था करना, जो भी करना है, सब लक्ष्मण को जाना पड़ता था। तो कोई नगर में जाते थे, किसी राजा के नगर में जाते थे, तो वहां उपद्रवी तो थे ही, तो जाके कुछ ना कुछ उपद्रव किए बिना रहते थे। राज दरबार में चले जाते थे, वहां लड़ पड़ते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो राजा अपनी लड़की की शादी की घोषणा कर रहा होता है कि जो ऐसा करेगा वो मेरी लड़की की शादी कर दूंगा, तो वहां पहुंच जाते थे। ऐसे लक्ष्मण ने सैकड़ों शादियां कर ली वनवास के समय में, राम तो एक ही को लेकर दौलत रहे। कदम पुराण पढ़ना और सबसे पहले तुम्हें यहीं रहो, तो मैं पहुंच जाऊंगा अयोध्या, तब तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहानियां हैं। एक एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, छोटी सी 5 मिनट की। एक राज दरबार में गए, तो वहां उन्हें भाई उत्तमता का परिचय देना, बोला भी जवाब नहीं, कुछ बतावे नहीं, ढंग से कौन हूं, मैं क्या हूं, परिचय तो देवे नहीं, गुप्तवास में थे ना। तो वहां से इन्होंने ललकारना शुरू किया, तो आक्रमण शुरू किया। तो इन्होंने ऐसा उसमें लिखा है पद्म पुराण में, उसके जवाब नहीं दिया, कोई सामने वाला तीर चलाते थे, उसके तीर के जवाब नहीं दिया, तो वो तीर आए तो उसने हाथ से पकड़ लिया, तो दूसरा तीर आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा तीर आया तो इधर से पकड़ लिया, चौथा तीर आया तो इधर से पकड़ लिया, पांचवा तीर आया तो इधर दाबा ऐसा दाब लिया, छठवां तीर आया तो ऐसा दाब लिया, सातवां तीर आया तो पैर से दाब लिया, दूसरे पैर से दाब लिया, घुटने के दाब लिया, फिर आया तीर तो एक दांतों से ऐसा करके तो इधर दाब लिया, जरा देर नहीं दब पाता तो क्या ये किया, तो सारा राज दरबार 1 मिनट में सरेंडर हो गया कि ये कैसा आदमी। उसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमण को सहने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इधर होते हैं, तुमने कभी टीवी पे देखे होंगे, वो दंगल होते हैं फिर मुक्केबाजों का, ऐसा थोड़ी है कि तुम ही तुम मुक्के मारोगे, सामने वाला हाथ डर गया बेटा, वो भी तो मारेगा ना, और वो भी तो उसके 2-4 अच्छे तुम्हें पढ़ सकते हैं ना, और उनको सहने की ताकत तुम में नहीं हो तो तुम अखाड़े में उतर नहीं सकते। मुक्केबाजी को आक्रमण करने के पहले आक्रमण सहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुक्के खाने पड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है। तो जो अब समझ में आए ना पिटने का मतलब, कि पिटने की सामर्थ्य हो वो पीट सकता है, तो हम किसी से लड़ पड़ो तो वो थोड़ी ना निकल हो रहेगा, हो सकता है वो तुमसे भी बलवान निकले, वो जमा दम 2-4 तुम्हें जमा देते हो, तो 2-4 खाने की ताकत होनी चाहिए ना है? तो उन्हें एक तो धीर, अब दूसरा धीर और उदात्त सबसे बड़ी अनायक होता है। धीर तो है ही बर्दाश्त करने की ताकत, और फिर उदारता है, फिर ऐसा नहीं कि आप प्रदर्शित होगी ताकत, आप हार गए तो फिर आपकी पिटाई ऐसी करे कि आपको मार के फेंक दे, जाओ कोई बात नहीं, जाओ चलो तुम्हारा राज छीन लिया, तुम कोई दिया, तुम करना संभालना बस खत्म। ये उदार समझे आप, जो शत्रुओं को माफ करना जानता है वो उदार, समझे ना, नहीं जो उदारता नहीं कहने 2000 दे दें, ऐसा नहीं करता होगा। असली उदारता तो क्या है कि जिसने हमारी जान लेने की पूरी कोशिश की उसको जिंदा छोड़ देना, कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं देना, उसका राज भी वापस कर देना, क्यों, ये उदारता, ये धीर उदात्त ना, समझे, धीर और उदार। ऐसे जो नायक है ना, राम थे ना, राम धीर उदात्त, जैसे सामने तो रावण को वापस नहीं, मरेगा तो क्या वापस करते, उसके भाई को दे दिया श्रीलंका का राज, तो उन्हीं को वापस करना हुआ, जो बचेगा उसी को तो देंगे, समझे, धीरोदात्त। अब दूसरा कौन, धीरोधत्त, धीर तो है लेकिन उद्दंड है, रावण जैसा, कंस जैसा, उद्दंडता है, मार दो, मतलब वो बर्दाश्त करने की ताकत तो पूरी है लेकिन उदारता नहीं है, उद्दंडता है, धीरोधत्त। ये रावण जैसे लोग ऐसे में आते हैं। फिर धीर ललित, धीर भी बहुत है और रसिया भी है, श्री कृष्ण का नाम आता है उसमें, नाच में मैं गाने में मस्त गलिए ललित का मतलब समझे आप, धीर ललित। और चौथा धीर प्रशांत, सहन करने की ताकत है और शांत चित्त है, राग द्वेष नहीं बिल्कुल भी। महावीर भगवान है ये धीर धीर प्रशांत नायक में आते हैं। क्या ये चार प्रकार के नायक आप समझ गए ना, धीरता तो सब में ही है और एक एक दूसरे सेकंड नंबर पर बदलते गए। ये सब नाट्य शास्त्र में लिखा है, लंबा थोड़ा मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, लेकिन मैंने संक्षेप में बता भी दिया, संक्षेप में इस किताब में लिखा भी है। ये भरत मुनि से शुरू होता है नाट्य शास्त्र, 2000 वर्ष पुराना ये भी है कुनकुन के समय से, है? और उसमें कितने कितने परिवर्तन होते रहे हैं, आज तक क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं, कैसे कैसे हो गए हैं, वो सब बातें आती हैं। अब ये जो नायक है कौन सा नायक, वो ज्ञान वाला नायक है। वो ज्ञान वाला नायक वो कैसा, धीरोदात, धीर भी है उदार भी है और अनाकुल भी है, कोई आकुलता नहीं है, तो उसने ऐसा कह दिया समझे ना, और निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं है, ऐसा ज्ञान स्टेज पर समुन्मज्जति अपना वैभव दिखाता है, बंध को धुनता हुआ ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान को यहां नमस्कार किया है। देखो मैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूं, नित्य ही आनंद अमृत का भोजन करने वाला, धीर उदार अनाकुल और निरुपाधि ज्ञान राग के उदय रूपी महारस के द्वारा समस्त जगत को प्रमत्त करके रस भाव से भरे हुए नृत्य करते हुए खेलते हुए बंध को धुनता है, धुनता हुआ उदय को प्राप्त होता है। ज्ञान का उदय हुआ माने बंध को धुन किया, वो धुनता कर रहा था, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे ज्ञान को अब आश्रव अधिकार में आश्रव को धुनता हुआ प्रकट होगा। अब जो बनारसी दास के छंद है इसमें वे बहुत मार्मिक है। देखो नाटक समय सार में और मेरा ये कलश पद्यानुवाद में अंतर क्या है ये आप लोग समझ लो, लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि थाना नाटक समय सार क्या जरूरत थी इसकी पद्यानुवाद की, लेकिन आपने देखा है नाटक समय सार को कि कौन से छंद का कौन अनुवाद है, 10-20 छंद ऐसे छूट गए जिनका कोई पद्यानुवाद ही नहीं है उनके यहां, और एक एक छंद के 10-10 छंद लिख दिए, उनने कोई पद्यानुवाद नहीं किया, उनने तो राजमिल जी की भाषा टीका पढ़ी थी, जो छंद के नहीं जानते थे, उनने छंद पढ़े भी नहीं थे ढंग से, राजमिल की जो टीका है कलश टीका उससे पढ़कर जो जो भाव उनके दिमाग में जम गया उस पर उन्होंने अपनी कविताएं लिख दी। और वो बनारसी दास के जो कवित्व लिखे जो उन्होंने, वो आगरा की गलियों में वैसे गाए जाते थे लोगों के द्वारा जैसा इस सिनेमा के गीत आजकल के लड़के लड़कियां बाजार में चलते चलते गाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए थे। ये तो उनके मरने के बाद किसी उनके भगत ने उसे व्यवस्थित किया नाटक उन छंदों को, और उनने लगा लगा के इसमें इसका जैसे आ गया ना कि धोबी के सदन गए हो कोई आदमी तो उसका इसका है ये इसका है, तो उसने ऐसा नेते बैठा बैठा करके अब वो छंद सेट कर दिए हैं, ऐसा है। अपन ने एक एक पंक्ति से अनुवाद किया है, हर छंद का किया, एक एक पंक्ति से अनुवाद किया, इसलिए दोनों की खूबसूरती अलग है, दोनों का अकेले अध्ययन से आपको लाभ है, उसे छोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा, इसे छोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा। देखना भाई इसमें निकालना इसमें छंद आया होगा कोई ना कोई, इसमें देखो पढ़ो इसमें, मोह मदे पाई जिने संसारी बिकले कीने, हाँ हट में प्रगट भयो उद्धत उदार जाको उद्यम महा तू है सोहे समय कित सूर्य आनंद अबराजी दास ने से सम्यक सूर्य सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन रूपी योद्धा बना दिया और वहां वो तो ज्ञान योद्धा आप सुने ना अब आप अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा अब वो ज्ञान योद्धा है सही है कि ये समकित योद्धा सही है हालांकि सम्मेलन समय ज्ञान एक साथ ही पैदा होता है तो समकित को योद्धा बनाया अब यहां के सामने अकेला मिथ्या तो रहेगा पूरा बंध तो खड़ा नहीं रह पाएगा ना सोई समकित सूर्य आनंद अंकुर वहां था ना आनंदामृत भोजी जिसमें आनंद अंकुर ताही नरख बनारसी नमो नमो कहते उसे उस ज्ञान सम्मा दर्शन को बनारसी दास नमस्कार कहता है किसको मारा मोह मद पाई जिन संसारी विकल की ने जिस बंध ने मोह रूपी मदरा पिलाकर सारे संसारी जीवों को विकल माने दुखी किया यही थे अजान बाहु बिरद इसलिए उसे अजान बाहु कहते हैं अजान बाहु कोई बहुत बड़ा सूरवीर राजा भी हो गया और हर जो योद्धा होता है वो अजान बाहु होता है बाहुबली है से अजान बाहु बोलते ना माने जिसके जो हाथ है ना एक घुटने तक जाए जानू माने घुटना बाहु माने हाथ समझ गया कैसा समझ में आया कि नहीं आया ये घुटने तक हाथ पहुंचे उसे अजान बाहु बोलते तो इतना लंबा हाथ होगा तो उसकी पकड़ भी उतनी ज्यादा होगी उतने दूर तक वाले को मार सकेगा ताकतवर ज्यादा होगा तो उसे अजान बाहु विरत कहते हैं समझ में आया कि नहीं है ऐसो बंध वीर ये तो किसकी महिमा है बंध की विकराल महाजाल सम ज्ञान मंद करे चंद्र राहु जो कहत है चंद्रमा को जैसे राहु ग्रहण कर लेता है ना ऐसे ज्ञान को ये मंद कर देता है कौन मोह और ताको भल भंज देखो घट में प्रगट भयो कौन सम्मेलन रूपी सूर्य उसका बल को तोड़ने के लिए हृदय में प्रकट हुआ घट माने शरीर में आत्मा तन उद्दत उदार जाको उद्यम महत्व है जो उद्दत है उदार है और जिसका उद्यम प्रसाद महत्व है इनने उसे उद्दत धीरो दत्त नायक माना है यार देखो उद्दत शब्द का प्रयोग किया उद्दत उदार जाको उद्यम महत्व है सोई समकित सूर आनंद अकूर ताई निरख बनारसी नमो नमो कहती है जब जिस छंद हमने पद्यानुवाद किया तो बनारसी दास का हमारे सामने था ना तो हम उसकी नकल भी ठोक सकते थे क्यों तो हमने अपना विवेक से निर्णय किया कि उन्होंने तो इस तरह से लिखे थे अब हम उनके पीछे चल के क्या करें उन्होंने कोई इस छंद के पद्यानुवाद के लिए नहीं लिखा था उन्हें तो बंधने की एक महिमा पर जो आया तो उन्होंने उसकी एकदम महिमा के गीत गा दिए और उनने सेट कर दिया यहां अब ज्ञान सूर की जगह सम्यक सूर हो गया तो मेरे कहने का मतलब यह है अपन ने आज बंध अधिकार के मंगलाचरण पर चर्चा की अब कल से गाथाएं आरंभ करेंगे।